ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਿਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜਾਓ ਕਰ ਹੋ, ਹਾਜ਼ਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ, ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰ ਹੋ, ਹਾਜ਼ਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤ ਗਿਰੀ ਨਾਹੇ, ਰਹਾਉ ਦਰੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਹੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ, ਸਿਆਮ ਮੂਰਤ ਨਾਹੇ, ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰੀਆ, ਗੁਸਲ ਕਰ ਦਨ ਬੂਦ, ਕਰ ਫੱਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸਮੇ, ਜਹ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਸਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ, कबीर करम करीम का ओह करे जन सोए अल्लाह पाकं पाक है सक करो जे दूसर होए कबीर करम करीम का ओह करे जान सोए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
वाहेगुरु जी सतनाम श्री वाहेगुरु पाव सहावे ज्ञान तो तेरे जुल दे शीस सहावा चरनी मुख सहावा ज्ञान तो जस गावे जियो पया तो शरनी तेंडे बंदस मैं कोई ना डिठा तू नानक मन पाणा कोल कमाई तिस मित्र विचोले जै मिल कंत पिशाना तुमरे शरण तुम्हारी आसा तुम्हें सज्जन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले शहनशाह हर दो आलम साहिब कमाल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत संगियो करो रसना पवित्र आओ गज के फतेह बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियो आप वडभागी हो जो अमृत वेले तो सतगुरु जी दी पावन पवित्र दरगाह अंदर बैठ के जिथे रबी बाणी अलाही बाणी दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है उत्थे जो अज सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तो पातशाह जी ने मुबारक हुक्मनामे की बख्शिश की है उस हुक्मनामे की विचार असा रल मिल के करनी है। गुरुद्वारा दीवान हाल मंजी साहिब विखे आप सब संगतां नतमस्तक होए हो इत्थों सतगुरु जी जो उस उपदेश करदे ने असां झोलियां भर के जाणियां ने क्योंकि सिख दा करम यही है आए हाँ गुरु घर ते इत्थों कुछ लै के जाइए इत्थे सिख ने कुछ अर्पण करना है इत्थों कुछ प्राप्त करना है। सिख ने अर्पण की करना है ते प्राप्ति की करनी है आ के अपना आपा अर्पण करने अपनी मत अर्पण करनी है कि हे सतगुरु जी मैं अपनी मत तुहाडे चरणा में अर्पण करदा ते कृपा करो दासरे नू समत दी बख्शिश कर दिओ। गुरु दी मत लै के जाणी अपनी मत गुरु दे चरणा में रखनी है। गुर की मत तू ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने। गुरु की मत ग्रहण करिए। पर कमाल की गल है असी वेखते हैं कि मनुख कोई माया अर्पण कर दे गुरु अगे, एक बारी अर्पण कर दी नहीं चुकता। कोई फुल लेके आया उसने फुल अर्पण किए ने दोबारा नहीं चुकेगा। पर बदकिस्मती है कि मनुख रोज़ ही अपनी मत गुरु अगे रखदा है पर फिर गुरु की मत ग्रहण नहीं करता, अपनी मत ही फिर चुक के लै जाता है। इत्थे गुरु की मत लैण वास्ते आए हैं, गुरु की मत ग्रहण करिए। तो अज जो मुबारक हुक्मनामे की बख्शिश होई है ये मुबारक हुक्मनामा तिलंग राग अंदर भगत कबीर जी की मुबारक बाणी है जो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंग 727 ते सवायमान है, जिसका मूल पाठ आप जी ने सरवण किया है। इस विच जो रहाओ की पंक्ति है जो कि सारे शब्द का सेंट्रल आइडिया मूल भाव है, जो सारी विचार शब्द की जिस दे दुआले घूमती है, उस विच कबीर जी बख्शिश करते ने कहन लगे बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माहे। ये जो दुनिया सहर मेला दस्तगीरी ना है समझाया। कह लगे कि हे प्राणी तू केवल संसार नाल ही सांझ पा के बह गयो, तू केवल भैणा भरावां नाल सांझ पा के बैठ गया, पर इस संसार ते एक मेले दी न्याई है। केड़ा मेला? एक तमाशे दी न्याई है। ये कदे भी सदीवी नहीं रहन वाला। जिसनू मनुख ने सदीवी मन लिया, कबीर साहब जी कहिंदे ने नहीं प्यारिया तू परम विच है, भुलेखे विच है। ये जो दुनिया सहर मेला ये तो एक तमाशा है, ये विच दस्तगीरी ना है। कहिंदे ने किसे भी तेरी बाह नहीं फड़नी, केवल एक धोखा है। पर मनुख नूं ये धोखा भी सच नज़र आउंदा है। बदकिस्मती यही है कि मनुख जो सच है उस ते भरोसा कोई नहीं, यकीन कोई नहीं, ते जो झूठ है उस ते भरोसा करके बैठ गया, उस नूं सच मन के बैठ गया। साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां दा मुबारक बचन असी सुखमनी साहब की पावन बाणी विच पढ़दे हां। साहब जी कहिंदे ने छोड़ जाए तिसका श्रम करै, कहिंदे ने जिहड़ियां चीज़ां ने छड़ जाणा उन्हां वास्ते श्रम भाव मेहनत बड़ी मेहनत करदा है, धन दौलत वास्ते बड़ी मेहनत करदा है। पर धन दौलत भी कुछ समय वास्ते है, सदीवी साथ नहीं देवेगा, केवल धोखा है। छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै। पर जेड़ा हर वेले दा संगी हर वेले दा सहाई वो परिपूर्ण परमात्मा उहदे तो मनुख दूर भजदा है। कारण की है कि अज्ञानता वस है, बाहर भटक रहा है, इसने अपने अंदर झाती मारी कोई नहीं। जिसनों किसी चाओ पैदा होया भी कि मैं उस परमात्मा नूं किते मिल लवां जिस वास्ते आया पई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। ते मन विच आई कि मैं उस परमात्मा नूं मिलन लई आया, अंदर जग्यासा पैदा होई ते फिर सोचदा कि हुण मिलिया किवें जाए। ख्याल करियो जदों मनुख अग्ञानता वस होवेगा ना फिर ये बाहर भटकदा है, बाहर दौड़दा है कि हो सकदा परमात्मा मैनू बाहरों मिल जाए। परमात्मा की तलाश विच भी ये बाहरों बाहर नूं दौड़िया क्योंकि इसनों हर चीज़ ही बाहरों मिली है। इस मनुख नूं धन दौलत बाहरों मिलिया, भैन भरा इसनों बाहरों मिले, माँ बाप इसनों बाहरों मिलिया, संसार इसनों बाहरों मिलिया। इसने सोचा कि हो सकता निरंकार भी बाहरों ही मिल जाए। बस यही कारण है अग्ञानता वास्ते बाहर दौड़िया कि मैनू परमात्मा की प्राप्ति बाहरों होगी। इसनों परमात्मा जदों भी मिलेगा अंदरों मिलेगा पर बाहर भटकदा है। बाबा फरीद जी ने इस करके समझाउंदिया होया ये पावन बचन कहे। वो कहन लगे, फरीदा जंगल जंगल क्या पवे वण कंडा मोड़े। कहिंदे ने किथे वणां दे विच कंडे मरवांदा फिरदा, क्यों भटकदा फिरदा। वसी रब हयाली है जंगल क्या ढूंढे। कहिंदे ने प्यारिया तेनूं परमात्मा ते अंदरों मिलना है, वह परमात्मा ते तेरे अंदर है पर तू बाहर भटकदा फिरदा। कारण की है कि मनुख है ही बाहर मुखी है, ये हर चीज़ नूं बाहर वेखदा। ते एक ख्याल करियो जे कोई मनुख एक पुस्तक लैके बैठ गया ते पुस्तक नूं पढ़न वास्ते अखां तों थोड़ी जी दूरी चाहीदी है, जे अखां दे उपर पुस्तक नूं रख के बैठ गया ते पुस्तक दे अक्षर नहीं पढ़ सकेगा, थोड़ी जी दूरी बना के रखनी पैगी तां पढ़िया जाएगा, नहीं तो वह फोकस नहीं बन सकेगा। पर ख्याल करियो जिहड़ा परमात्मा अखां दे विच ही बैठा होवे उह किवें नज़र आवे, जिहड़ा है ही अखां दे विच है उस नूं किवें वेखेगा। उस नूं वेखण वास्ते फिर मनुख नूं अंतरमुखी होना पएगा। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावै, पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुर होए लखावै। ये प्राप्ति तां होवेगी जे किते गुरु दे नाल मेल हो जाए, गुरु ज्ञान दी बख्शिश कर देवे फिर ते भटकना मुक सकदी है, नहीं ते केवल भटकना बनी रहेगी। मनुख ने अपने अंदर झाती नहीं मारी। एक विद्वान ने बड़ी सुंदर बात कही है, वो कहिंदे ने बाहर दी खोज इसने बहुत कीती है। इसने पहाड़ां दे सीने चीर के कीमती हीरे प्राप्त कर लए, इसने सागर दी डूंघाई नूं भी नापिया, इत्थे ही बस नहीं इसने पलाड दी भी बड़ी खोज कीती, आकाश दी बड़ी खोज कीती है। वो कहिंदे ने कोई सागरी मोती लब्भे कोई डूंघाइयां नापे, कोई विच आकाश दे पिया खोज करेंदा जापे। पर कहन लगे कादर दी कुदरत नूं लभदे सदियां तों विज्ञानी, ऐ पर बुरी तरह ए हारे लभदे अपने आपे। मनुख अपना आपा लभदा ही हार गया, ये अंदर दी खोज कर ही ना सकिया, इसनूं ये ज्ञान ही ना हो सकिया कि मैं की हाँ। दूजियां बारे जानकारी तो लैंदा है पर अपने बारे नहीं। साहब जी सानू समझांदे ने मन तू जोत सरूप है अपना मूल पछाण। तू अपने आपे दी ते पहचान कर, अपने आपे नू नहीं समझिया, इसने मन नू नहीं समझिया, ये अंदर मुखी होया ही कोई नहीं, बाहर मुखी होया रहा, बाहर ही भटकदा रहा। इसने अपने अंदर झाती ना मारे। तो मैं एक बेनती करा, सतगुरु जी बार बार मन नू संबोधन करते हैं, मन ते जोर दिता जाता है, क्योंकि जदों भी गल बनेगी ना, जदों भी कहानी बनेगी उदों मन तो ही बनेगी। इस मन नू टिकाणा पएगा। साहब जी बाणी विच बख्शिश करते ने कि मनुख धन का आसरा लैंदा है, पदार्थां का आसरा लैंदा है, और धन दे नाल इसने बहुत कुछ खरीदन का यतन किया है। शाम दाम दंड भेद, ये चार चीज़ां ने, और इन्हां दे नाल दूजे ते हावी होण दा यतन करदा है। उन्हां दे विचों एक दाम है, धन दौलत है। धन दे नाल मनुख दी जमीर नूं खरीदिया जांदा है, मनुखां नूं खरीदिया जांदा है। और अज ते मैं वेखदा कि धन दा इन्ना बोलबल है कि अक्सर ही मनुख खरीदे जांदे ने। चंगे चंगे वधिया घराणे दे मैं वेखदा उन्हां लोकां दा भी जमीर विक जांदा है, ते जे ना किते यकीन आवे ते फिर इलैक्शन दे दिनां विच वेख लैणा। इलैक्शनां दे दिनां विच लोक खरीदे जांदे ने माया दे नाल, वोट खरीदे जांदे ने। वोट खरीदना की है? उस दे जमीर नूं खरीदना। और लोग अपना जमीर वेचदे ने, विक जांदा मनुख। तो साहब जी कहिंदे ने मनुख ने समझिया कि हो सकता है कि धन दे नाल परमात्मा भी खरीदया जाए। इसने ज़्यादा कीमती सोने नू मन लिया। पर साहब जी बाणी विच कहिंदे ने कंचन स्यों पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। कहिंदे ने कंचन दे नाल, धन दौलत दे नाल परमात्मा नहीं जे मिलदा। ये किवें मिलेगा? ये मिलेगा अपना मन अर्पण करन दे नाल। मन बेचै सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। पहला अपना मन अर्पण करना पएगा। तो मन नू किवें अर्पण करांगे? पहला जिहड़ी मन की मैल है ना, ये गुरु दे कोल आया कि मैल उतर जाए। पहला मैल उतरेगी। ख्याल करो, मैल मनुख नू मालक तो दूर कर दीजे। मैल मनुख नू मालक तो दूर ही बना देंदी। तुसी जिन्ने मर्जी सुंदर वस्त्र पहने हो, एक दिन पहनांगे, दो दिन पहनांगे, जिस दिन मैल लग गई उस दिन उतार के रख दिता जांदा है। ते किसी पुछया कि वस्त्र क्यों उतार दिते, ते जवाब मिलिया प्यारिया, ये मैले हो गए, इन्हां नू मैल लग गई, इन्हां नू धोण वास्ते दिता जाएगा। जदों साफ होए उस तों बाद फिर पहन लिया जाएगा। समझ आई कि मैल ने मालक तो दूरी बना दिती। हुण धन गुरु नानक दे महाराज जपजी साहब की पावन बाणी, उस दी आरंभता विच जो चार समस्यावां ने वो मन दियां दसदे ने। चार समस्यावां मन दियां। पहली समस्या ही मन दी है कि मन मैला बड़ा है, मन बहुत मैला है, और इसनू किते एक दिन की मैल नहीं, दो दिन की नहीं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। खनली धोती उजली ना होवे जे सौ धोवन पा। खनली कहिंदे ने ओ कपड़ा जिहड़ा कोलू वाले दे कोल हुंदा ते ओह बार बार उस दे नाल अपने हाथ भी साफ करदा है ते कोलू नू भी साफ करदा है। उस कपड़े नू इन्नी कु तंद मैल पै गई, इन्ना कु मैला हो गया कि भावें सौ वारी भी धोता जाए वह फिर भी उजला नहीं हो सकता। इस तरह ही यह मनुख का मन, इस कई जन्मों की मैल लगी है, और इन्ना कु मैला हो गया कि काला हुआ सिया, इन्नी मैल लग गई। तो साहब जी कहते ने जिहड़े लोगों ने इस तन नू केवल इशनान करके साफ करन दा यतन किया कि जे तन साफ हो जाए तो फिर मन भी साफ हो जाएगा। मेरे साहब जी ने उन्हां नू समझाण वास्ते ये मुबारक बख्शिश की। साहब जी कहन लगे प्यारिया, एक गल चेते रखी, ये तन दे साफ होने दे नाल कदे मन साफ नहीं होना। साहब जी कहिंदे ने सोचे सोच ना होवई जे सोची लख वार। कहिंदे ने भावें तू लखां वार इशनान करी जा, लखां वार इस नूं सुचा करन दा यतन करी, पर कहन लगे इस तरह ये तन दे साफ होने दे नाल मन साफ नहीं होना। तो जे मन मैला होवे ना तो ख्याल करो फिर हर चीज़ ही मैली जे, जे मन ही मैला है। मनुख दे हाथ भरे होन, चिकड़ दे नाल अलूद होन, ते जिसनू भी लगनगे उसनू ही मैला कर देंगे। जे हाथ मैले ने ते उन्हां दे नाल असी किसी चीज़ नू साफ नहीं कर सकांगे। जे मन ही मैला है ते मनुख की दृष्टि मैली होवेगी, जे मन मैला है ते मनुख दे बोल मैले होणगे, जे मन मैला मनुख की सोचनी मैली होवेगी। साहब जी कहिंदे ने मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन हछा ना होए। प्यारिया ये मन मैला, तो इस मन की मैल नूं किवें दूर किया जाए। साहब जी बाणी विच बख्शिश करदे ने भरीए हथ पैर तन दे पाणी धोते उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईए वो धोए, भरीए मत पापा के संग वो धोपै नावें करांगा। कहिंदे ने मन की मैल केवल नाम द्वारा उतरेगी। तो मैं फिर बेनती करा नाम कितों मिलेगा, नानक के घर केवल नाम। ये नाम तो गुरु को मिलना, गुरु की शरण में आना पेगा। तो पहली समस्या ही है कि मन मैला बड़ा है। दूजी समस्या की है कि मन बोलता बड़ा है, मन चुप नहीं करता। ख्याल करो मनो हर वेले मन बोलेगा, जबान तो चुप कर जाएगी पर मन चुप नहीं करेगा। जिन्ना लोगों ने मौन धारण किया ना, उन्हों का भी अर्थ यही सी कि किसी तरह जे जबान चुप कर जाए तो हो सकता है कि मन भी चुप कर जाए, पर मन तो हर वेले बोलता है। ये तो जे रात मनुख सौ गया तो भी सुपनिया की दुनिया में तुरै फिर, मन कदे भी बैठता ही नहीं। इस करके इसनों कह चंचल चल चल, ये नहीं टिकता, ये बहुत बोलता है। तो साहब जी कहते ने कि मन बहुत बोलता है, तो हुण बाणी किसनू सुनानी है, पूजा पाठ किसनू सुनाना है, मन नू कि किते मन टिक जाए। तो ये भी मैं बेनती करा कि जे किते दो मनुख इकट्ठे गल्लां करदे होण तो दोवां दे पल्ले कुछ नहीं पै सकता। एक मनुख गल करे तो दूजा सुने समझ आएगी, पर जे दोवे ही बोलते ने तो समझ नहीं आएगी। हुण जबान आखे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, तो मन सुनेगा तो तां गल बनेगी, तो जे मन भी नालों नाल बोल रहा है तो गल नहीं बनेगी। साहब जी उन्होंने संबोधन किया जिन्होंने मौन धारण किया, कह लगे चुप है चुप ना होवी जे लाए रहा लवतार। फिर कह लगे मन भुखा बड़ा है, ये मन रजदा ही नहीं, इसनू कोई नहीं रजा सकिया, सिकंदर वर्गे नहीं रजे, बहुत भुखा है बहुत भुखा है। कहिंदे ने एक वारी एक राजा जा रहा सी रथ ते बैठा होया, सिकंदर बादशाह, ते सामने रस्ते विच एक फकीर बैठा है। इसने फकीर वल वेख्या, हुण ताकत दा नशा है, हंकार दे बोल बोलदा है। कहन लगे इस भिखारी नूं बाहों फड़ के रस्ते चों परे करो। बेपरवाह फकीर सी, कहन लगे इस भिखारी नूं परे करो रस्ते विचों। ते गुरु सवारियो उस फकीर नूं जदों बाहों तों फड़ के परे करन लगे ना, उसने कहा राजन रुक जा, तेनू पता नहीं मैं एक नजूमी हाँ। कहन लगे मैं तेरा आने वाला भविख दस सकदा, और इत्थे ही बस नहीं, तू जो मंगे तेनू मैं दे भी सकदा। मैं तेरा भविख भी दस सकदा, तेनू मैं दे भी सकदा जो भी तू मंगे। उसने कहा अच्छा। कहन लगा फिर फकीर साईं दस मेरा भविख की है, तू मैनू की दे सकना। हुण वेखो मनुख दा लालच, जेड़ा थोड़ी देर पहला भिखारी कह रहा सी ना, थोड़ा जिहा लालच दिता कि जो तू मंगे तेनू दे सकदा, ते हुण भिखारी तो फकीर साईं ते पहुँच गया। कहन लगा फकीर साईं फिर दस तू मैनू की दे सकना। कहन लगे जो मंगे तेनू देंगा, पर एक गल है, मैनू रथ ते बैठना पेगा, तेनू थले खलो के मंगना पेगा। वो भिखारी जिसनू भिखारी कहा गया सी, हुण सिकंदर कहन लगा फकीर साईं छेती बैठ, आप थले उतरिया, इस फकीर नू रथ ते बिठाया। ते फकीर हसया, कहन लगा सिकंदर झोली कर। हुण झोली अड के सिकंदर अगे खड़ा है, थोड़ी देर खड़ा रहा, ते उस तो बाद वो फकीर खिड़खड़ा के हस पिया। कहन लगा सिकंदर तू मैनू भिखारी कहा सी ना, पर एक गल चेते रखी, दुनिया ते तेरे तो वड्डा भिखारी कोई नहीं हो सकता। जेड़ा एक भिखारी दे अगे झोली अड के खड़ा है, उस तो वड्डा दुनिया ते भिखारी केड़ा हो सकता है। ख्याल करियो, ये मनुख का मन कदे नहीं रजदा, ये मन भुखा है, ये मन मूर्ख बड़ा है। तो मेरे साहब जी बख्शिश करते हैं कि इस मन को समझाना है, और जिस दिन इस मन को समझ आ गई ना, उस दिन मन टिक जाएगा। अज दे इस मुबारक शब्द अंदर भी कबीर जी कहते ने, बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माहे। कहते ने तू भटकदा क्यों है, उन्नी देर भटकदा है जिन्नी देर तू असलीयत तो दूर है, जिन्नी देर तू सच तो दूर है उन्नी देर भटकना बनी रहेगी, पर जिस दिन तू सच दे नाल जुड़ गया उस दिन तेरे अंदर टिकाओ आ जाएगा। जिस दिन तेरा मन टिक गया उस दिन वो जोत स्वरूप परमात्मा दे तेनू दर्शन हो जाएंगे। ख्याल करियो, कोई मनुख किसी थाली विच पानी पा के बैठा होवे ना, ते जिन्नी देर पानी टिकदा नहीं उन्नी देर तुहानू अपना चेहरा भी नज़र नहीं आएगा, उन्नी देर नज़र नहीं आएगा। पर जदों पानी टिक गया उस दिन अपना चेहरा भी साफ नज़र आएगा। ख्याल करियो, जिस दिन मन टिक गया ना उस दिन वो परिपूर्ण परमात्मा का दीदार भी हो जाएगा, नहीं तो उन्नी देर भटकना बनी रहेगी। तो कबीर साहब जी अज दे मुबारक शब्द अंदर बख्शिश कर रहे ने, आओ बड़े ही प्यार दे नाल सरवण करिए जी।
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तिलंग बाणी भगता की, कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद।
कबीर साहब जी तलंग राग अंदर ये मुबारक शब्द बख्शिश कर रहे ने, और उस तो पहला मंगल है जिदे विच बख्शिश करते ने, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वो परिपूर्ण परमात्मा एक है, पर उस दी प्राप्ति वो गुरु दी बख्शिश तो बगैर नहीं हो सकती, गुरु दी कृपा दे नाल ही प्राप्ति हो सकती है।
बेद कतेब इफतरा पाई, दिल का फिकर ना जाए।
बेद कतेब इफतरा पाई, इफतरा शब्द अरबी भाषा दा है। इहदे विच बख्शिश कर देने कि ओ लोक जेड़े दूजे दे धर्म ग्रंथां ते केवल कुटाक्ष करदे ने, आपणे नूं उच्चा ते दूजे नूं नीवां विखाण दा यतन करदे सन। इस तरह लगदा है कि कबीर जी ने इन्हां दोनां दी बहस सुनी ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਅੰਜੀਲ ਹੈ, ਤੌਰੇਤ ਹੈ, ਜੰਬੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬੇਦ ਕਿਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰਹੋ, ਹਾਜ਼ਿਰ ਹਜੂਰ ਖੁਦਾਏ।
ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪਿਆਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਤ ਦੂਰ ਬਤਾਵੋ, ਦੁੰਦਰ ਬਾਂਧੋ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਭਟਕਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੁਣ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਪੂਲੇ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਪਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। परमात्मा अंदरों ही प्रगट होवेगा जदों भी होवेगा, पर होवेगा तां जिस दिन अंदर झाती मारन दी जाच आ गई।
एह जो दुनिया से हर मिला दस्त गिरी नाहे।
कबीर जी कहिंदे ने संसार एक तमाशा है, इहदे विच सच्चाई कोई नहीं, क्योंकि तमाशे विच कदे भी सच्चाई नहीं हुंदी। असीं वेखदे आ कई वारी वो जादू दा खेल विखाण वाला, वो कई वारी वेखदे आ कि वो लखां रुपये विखा दिंदा, पर जे वो सच होवे तां फिर रुपया रुपया क्यों मंगदा फिरे। हकीकत यह है कि उस विच झूठ है, सच्चाई कोई नहीं, केवल अखां दा धोखा है, नज़र दा धोखा है। कबीर जी कहिंदे ने संसार भी प्यारिया इस तरह ही आ, इहदे विच सच्चाई कोई नहीं, जे सच्चाई लभनी है तो फिर तैनूं गुरु नाल जुड़ना पएगा, परमात्मा नाल जुड़ना पएगा, और एक केवल परमात्मा ही है जिहड़ा तेरी बाँह फड़ सकदा है। ये जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी ना, कहिंदे ने इत्थे किसी भी तेरी बाँह नहीं फड़नी, इत्थे किसी भी तेरी सहायता नहीं करनी, जे करनी है तो केवल उस परमात्मा ने करनी है। जो भी मंगना है उस मालिक कोलों मंगी, ये दुनिया के लोगों अगे मथे ना रगड़दा फिरे। पर अज तो मैं वेखदा कि सतगुर साहिब छड़ के मनमुख होए बंदे दा बंदा, असी तो बंदिया के पिछे ही तुरे फिरने हैं। असी तो साड़ी ये अवस्था बन गई कि मनुख की सांझ जां ते नात्यां दे नाल रह गई, पिया मेरे भैन भरा रिश्तेदार, जां ते नात्यां दे नाल इहदी सांझ है ते जां फिर नेत्यां दे नाल सांझ है, दो ही चीज़ां ने। उस मालिक दे नाल सांझ नहीं बनांदा, पर ये केवल धोखा है। साहब जी कहिंदे ने प्यारिया उस परमात्मा दे नाल सांझ पा जिसने तेरी सदीवी बांह फड़नी है।
रहाओ दरोग पड़ पड़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाहे।
कहिंदे ने दरोग पड़ पड़ खुशी होए, इहदा भाव यह है कि जिहड़े आपस में बहस कर करके जिहड़े असलीयत तो दूर ने, और दूजियां दे धर्म ग्रंथां नूं नीवां विखा के आप बड़े प्रसन्न हुंदे सन। कबीर जी कहन लगे कि दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, वधा के गल्लां करनियां ते खुश होना। कहन लगे इहदे नाल गल नहीं बननी, दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाहे। पर कहिंदे ने हैण ना समझ, इन्हां नूं आप नूं समझ कोई नहीं, ते केवल एवें एक दूजे दे नाल बहस मुबासा करदे ने, इन्हां नूं असलीयत दी जानकारी कोई नहीं है।
हक सच खालक खलक मियाने, श्याम मूरत नाहे।
कहिंदे ने ओह परिपूर्ण परमात्मा हक सच खालक खलक म्याने, म्याने दा अर्थ है विच। कहिंदे ने ओह परमात्मा ते सारी खलकत दे विच है, सदा रहण वाला परमात्मा ओह हरेक मनुख दे विच है, श्याम मूरत नाहे। कहिंदे ने केवल ये ना समझो कि कृष्ण जी की मूर्ति दे विच ही बैठा होया, नहीं, वो सारे थावां ते व्यापक है। भगत नामदेव जी ने उन्होंने बड़ा प्यारा बचन किया सी, वो कहिंदे ने कि वो परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ा ना वो सारे थावां ते व्यापक है। कोई ये नहीं है कि वो किते मस्जिद दे विच बैठा है, वो किसे मूर्ति विच बैठा है, मंदिर विच बैठा है, नहीं, वो सारे थावां ते है। और उन्होंने उस समय के लोगों ते कटाक्ष भी किया, और उन्होंने समझांदिया होया भगत नामदेव जी ने बड़ा प्यारा बचन किया सी। वो कहिंदे ने कि मैं केवल एक परमात्मा का उपाशक हाँ, और उन्होंने कह दिता कि हाँ तो एक रमैया लेवो आन देव बदलावन देवो। कहन लगे मैं सारे देवते ये बदले विच देन लई तैयार हाँ, मैनू केवल एक परमात्मा चाहिए। कारण की सी कि उन्हां नूं परमात्मा मन बैठे जिन्हां नूं परमात्मा ने बनाया। महादेव को कहत सदाशिव, निरंकार का चीनत नै पिव। कहिंदे ने उह परिपूर्ण परमात्मा नूं तां जाणदे ही नहीं, ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਟਕਣਾ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਊ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪੰਡਿਤ, ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗਊ ਦਾ ਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਊ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਸਨੇ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਅਤੇ ਦੌੜਿਆ, ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਲੱਤ 'ਤੇ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਗਊ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਲੋਧੇ ਕਾ ਖੇਤ ਖਾਤੀ ਥੀ, ਲੇਕਰ ਠੇਂਗਾ ਟੰਗੜੀ ਤੋੜੀ ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਜਾਤੀ ਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚਰਨੇ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਗਾਇਤਰੀ 'ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਚੜਿਆ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਲੋਧੀ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ ਵਾਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਂਦੇਵ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਸੋ ਪੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਪਰ ਹੋਈ ਘਰ ਕੀ ਜੋਏ ਗਵਾਈ ਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਕੇਵਲ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਣ ਦੇ ਹੋਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਜੇ ਦਰਗਹਿ ਜੋ ਦੇਵਰਾ ਨਾਮ ਸੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਅਗਿਆਨ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰੀਆ ਗੁਸਲ ਕਰ ਦਨ ਬੂਦ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਦਰਿਆ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰ ਫੱਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ ਜਹਿ ਤਹਾ ਮੌਜੂਦ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ, ਗੁਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਚੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੱਥ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।
ਅੱਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ ਸਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ।
ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਕਾ ਉਹ ਕਰੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ।
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਮ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੁਰੈਂਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਏਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਗੁਰਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਇੰਨੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲ ਪਏ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸੁਣੀ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣ ਵੱਜਾ, ਪੈ ਗਈ ਸੂਝ ਨਿਰਛਲ ਹੈ ਛਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਂਧੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਤੁਰਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਖੰਡੂਰ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹੋ ਦਾਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਗਲਵੱਕੜੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿਣ ਆਇਆ, ਦਰ ਵਾਲਿਆ ਦਰ 'ਤੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਘਾਸਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਢੱਠਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ।
ਅੱਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਸਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ, ਕਬੀਰ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਕਾ ਉਹ ਕਰੈ ਜਾਨੈ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।